તારીખ 2/9/1992 શ્રી પરમાત્મા પ્રકાશ ગાથા 43 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 12
ગાથા 43 કી ભાવાર્થ પર પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કા એ પ્રવચન હૈ द्रव्य दृष्टि प्रकाश के द्वितीय खंड में ये प्रकाशित किया गया है। क्या कहते हैं गुरुदेव कि यद्यपि पर्यायार्थिक नहीं से भगवान आत्मा, भगवान आत्मा माने कारण शुद्ध परमात्मा, भगवान आत्मा माने कारण शुद्ध परमात्मा ध्रुव प्रभु है, अंतर में विराजमान ध्रुव प्रभु है, उसको अवस्था का उत्पाद व्यय होना ऐसा नहीं है, पूर्व अवस्था का, वर्तमान अवस्था का उत्पाद होना और पूर्व अवस्था का अभाव में व्यय होना, फिर नई अवस्था का उत्पाद होना, यह ऐसा पर्याय का जो परिणमन है वो ध्रुव द्रव्य में नहीं है। क्या कहते हैं? वो ध्रुव द्रव्य में नहीं है। तो ये जो ध्रुव द्रव्य है ये कोई तीसरी चीज नहीं है, दूसरी चीज नहीं है, ये हमारा स्वरूप है। क्या है? ध्रुव द्रव्य है सो मैं हूं, ऐसा लेना है। कैसा लेना है? मैं ध्रुव हूं ऐसा लेने से फिर पर्याय सहज स्वयं होती है, वो स्वयं परिणमन कर रही है, उसको फिर परिणमन कराने का मिथ्या कर्तृत्व समाप्त हो जाता है। और कर्तृत्व कहां होता है? कि जहां एकत्व होता है वहां कर्तृत्व होता है, और जहां कर्तृत्व होता है वहां भोक्तृत्व होता है। और ये तीनों परिणाम मिथ्यात्व सहित अज्ञान भाव से होते हैं। क्यों अज्ञान भाव से होते हैं? कि परिणमन तो सहज ही हो रहा है, वस्तु परिणमनशील होने से परिणमन तो सहज हो ही रहा है, जो सहज हो रहा है उसको करना क्या, और जो नहीं हो रहा हो उसे करना क्या। अब देखिए कि अपने ऑफिस में, कारोबार में, व्यवसाय में कोई आदमी बराबर काम कर रहा हो, क्या अपनी ड्यूटी पे बिल्कुल समय सर आ जाता है, अपना काम अच्छी तरह संभाल लेता है, फिर उसको टोक टोक करो आप समय पर आ गया, फिर भी बोलो कि समय पर आ जाना, काम बराबर करता है तो काम ठीक करना उचित है क्या? है कि जो सहज स्वयं हो रहा है, अपना ड्यूटी बराबर संभाल रहा है, उसको फिर हस्तक्षेप कर करके डिस्टर्ब करना ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, वैसे ये परिणाम जो है वो सहज हो रहा है। मैं उस परिणाम रहित ध्रुव हूं, उत्पाद व्यय रहित बोला ना इधर, मैं उस परिणाम रहित ध्रुव हूं, तो सहज परिणाम जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अपने स्वकाल में जो होने वाला है, होना चाहिए ऐसा हो रहा है, उसमें कोई हेरफेर करने की बुद्धि ठीक नहीं है। यहां तो कहते हैं कि पर से तो भिन्न मेरा स्वरूप है ही, पर से तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मैं भिन्न हूं ही, लेकिन पर्याय भी ध्रुव वस्तु में नहीं है या मेरे में नहीं है। ध्रुव वस्तु में नहीं है इसका मतलब मेरे में नहीं है। वस्तु में कर्म नहीं है, शरीर नहीं है, पुण्य पाप के परिणाम भी नहीं है, पुण्य पाप रूप भाव भी नहीं है, और उत्पाद व्यय रूप पर्याय भी वस्तु में नहीं है, मूल चीज में नहीं है, क्योंकि वो तो स्वभाव सामर्थ्य स्वरूप है। दृष्टांत दिया है इधर गुरुदेव ने कि सुवर्ण के जेवर में, सुवर्ण में से कड़ा की पहले अवस्था हुई, एक कड़ा बनाया, पीछे कुंडल आदि जो है दूसरी अवस्था बनाई, उसको तोड़ करके हुई सुवर्ण में से। लेकिन जो सुवर्ण है वो तो उत्पाद व्यय रहित है। अगर वो त्रिकाल उत्पाद सहित होता तो फिर इस कड़ा में से कुंडल नहीं बनता। क्या ये जो सुवर्ण है वो त्रिकाल उत्पाद सहित रहता या होता तो फिर वो कड़ा में से कुंडल नहीं बन पाता, क्योंकि उसका व्यय नहीं हो पाता, नहीं हो सकता। इसलिए जो सुवर्ण है वो उत्पाद व्यय से रहित है। उत्पाद व्यय से सहित होने पर भी उत्पाद व्यय से रहित है। उपलक दृष्टि से, ऊपर ऊपर की दृष्टि से ये बात थोड़ी विचित्र लगती है। जो एक है वही अनेक है, जो अभेद है वही भेद रूप है, और जो उत्पाद व्यय सहित है वही उत्पाद व्यय रहित भी है। तो ये बात थोड़ी विचित्र लगती है, लेकिन सरलता से समझने का प्रयास करें तो समझ में आ सकती है, नहीं समझ में आवे ऐसी नहीं है। हाँ, सरलता से मतलब क्या है कि हमारे आत्मा की हित बुद्धि से, सरलता यहां किसको कहते हैं कि हमारे आत्मा का हित हमें करना है, इस बुद्धि से, हित बुद्धि से समझने का प्रयास करना चाहिए। क्यों कि असरलता से अनेक प्रकार के जो तर्क है वो तर्क उठ सकते हैं, अनेक प्रकार के जो तर्क हैं वो जो जिसकी जरूरत नहीं होवे ऐसे भी तर्क उठ सकते हैं, जिसका प्रयोजन नहीं होवे ऐसा भी तर्क हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है समझने के काल में कि हमारा मतलब कैसे सद्धता है, हमारा प्रयोजन कैसे सद्धता है, उतना हमें ध्यान में रखना है, उसी को यहां सरलता कहेंगे। अब कहते हैं कि आत्मा एकिला ध्रुव पिंड पड़ा है, क्या है, त्रिकाल आत्मा एकिला ध्रुव पिंड पड़ा है, उसमें राग विकल्प उत्पाद व्यय नहीं है, इसलिए राग विकल्प पर्याय पर का लक्ष्य छोड़ दें, क्या है, ये ध्रुव का लक्ष्य कराते हैं। अनादि से संसार में जीव को राग का लक्ष्य है, राग के विषयभूत पर द्रव्य का लक्ष्य है, मैंने अपने उत्पाद व्यय रूप पर्याय का लक्ष्य है, तीनों पर है, एक न्याय से तो ध्रुव के आगे मैं ध्रुव हूं तो ये तीनों पर है, तो उसका लक्ष्य छोड़ देना है। देखिए ये परिणमन का जो दौर चलता है, जिसके दौरान हर जीव का परिणमन चलता है, वो लक्ष्य के दौरान चलता है। क्या हम शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हमारा लक्ष्य कहाँ है, इस पर इसका फल होगा। अगर हमारा लक्ष्य हमारी ध्रुव आत्मा पर है तो हमारे परिणमन में शुद्धि होगी, और हमारे ध्रुव स्वरूप को छोड़ करके पर्याय पर हो, राग पर हो, या किसी दूसरे पर हो, निमित्त पर हो, तो पर्याय में अशुद्धि बढ़ेगी। क्या शास्त्र स्वाध्याय करने पर भी अशुद्धि बढ़ सकती है क्या? कि हाँ बढ़ सकती है, अगर लक्ष्य हमारे स्वरूप पर नहीं है तो, ये बात है। इसलिए ये लक्ष्य छुड़ाने के लिए कहा है। इस गाथा के प्रवचन में बार बार ध्रुव की मुख्यता से बात क्यों आती है, प्रवचन में ये बात क्यों होती है, इसलिए होती है कि इसका लक्ष्य छुड़ाने की बात है। जिसका लक्ष्य होता है उसकी ही मुख्यता होती है, जिसका लक्ष्य नहीं है उसकी मुख्यता करना चाहे तो भी नहीं होगी। जैसा कि हमने सुना कि हमारे ध्रुव आत्मा की मुख्यता करनी चाहिए, क्या हमने उपदेश सुना, उपदेश में वो बात सुनी कि हमारा परमात्म पद परम स्वरूप ध्रुव तत्व है, उसकी मुख्यता करनी चाहिए क्योंकि वो महान है। लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं बदला है हमने, तो इसकी मुख्यता करना चाहेंगे तो भी नहीं होगी, ये बात है। इसलिए हमारा परिणमन लक्ष्य के दौरान चलेगा, जो चलेगा सो मुख्यतया, ऐसी मुख्यता होगी। और धर्म के क्षेत्र में आने वाले जीव को स्वरूप लक्ष्य कब होता है, कब होता है माने किस स्टेज में होता है, इसका विचार हमें अवश्य अवश्य करना है। कि जब स्वरूप की पहचान होती है, क्या होती है, पहचान होती है तो लक्ष्य उसी का ही रहता है, लक्ष्य उसी का ही होता है, फिर लक्ष्य नहीं बदलता। और जहां तक पहचान नहीं होती है तो स्वरूप का लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए बिना लक्ष्य जो है ये काम सफल नहीं होता, कोई भी काम बिना लक्ष्य वाला सफल नहीं होता, क्योंकि लक्ष्य है वो एक ऐसी परिस्थिति है कि वहां आत्मा रहता है, जहां लक्ष्य है वहां आत्मा रहता है, जहां भी लक्ष्य है वहां उसी का आत्मा है, समझो वो आत्मा बन जाता है, लक्ष्य का विषय है सो आत्मा बन जाता है, तो वहां चोट रहती है, वहां से उखड़ते नहीं परिणाम। और दूसरा क्या फायदा है इसमें कि लक्ष्य के विरुद्ध के जो भी परिणाम आएंगे उसका निषेध सहज रूप से होता जाएगा। ये विधि निषेध का भेद ज्ञान चालू हो गया, और ये भेद ज्ञान है वो सिद्ध पद का कारण है। भेद विज्ञान तह सिद्धा, सिद्धा ये किल केचना, जो कोई सिद्ध हुए हैं वो वेद विज्ञान से हुए हैं। तो ये लक्ष्य छोड़ाने के लिए उपदेश चलता है अध्यात्म शास्त्र में ध्रुव आत्मा का। मूल वस्तु आत्मा उत्पाद व्यय का परिणमन बिना की है, भले ही पर्यायार्थिक नैस हैं, उत्पाद व्यय सहित है, भले ही पर्यायार्थिक नैस उत्पाद व्यय सहित है, वो तो आचार्य महाराज जानते हैं इसलिए कह भी दिया है, कोई गलत फहमी नहीं करे इसलिए कह दिया है कि पर्यायार्थिक नैस हम जानते हैं के उत्पाद व्यय सहित है, फिर भी तो भी उसको गौण करना है, किंतु परंतु करके उसको गौण करना है कि द्रव्यार्थिक नहीं से वही चीज उत्पाद व्यय रहित है। भाव अभावाभ्याम ऐसा लिया है, अभाव शब्द लिया है, उसमें से रहित निकाला है, रहित इसमें अभाव में से निकाला है, भावा अभावा। तो पहले अभाव में व्यय लिया है क्योंकि वहां संयुक्त शब्द लिया है, और इस उत्पाद व्यय को भाव के करके उसको अभाव ले लिया है, मैंने रहित लिया है, ऐसी बात। शास्त्र भी पढ़ने को तो आना चाहिए, जो अभिप्राय है शास्त्र बनाने वाले को, बनाने वाले का यही अभिप्राय के साथ हमें अर्थघटन करना पड़ेगा। अगर इनका अभिप्राय हम नहीं समझेंगे और हमारा दूसरा कोई गलत अभिप्राय है वहां लागू हो जाएगा, बात उल्टी हो जाएगी, बिल्कुल बात उल्टी हो जाएगी। तो कहते हैं कि द्रव्यार्थिक नैस है तो भी द्रव्यार्थिक नैस है उत्पाद व्यय रहित है। वस्तु मूल वस्तु अनादि अनंत है, अनादि अनंत है, मैंने सर्वकाल में, भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में, सभी वर्तमान में है और है, ऐसा लेना है। ये है और नहीं है में बहुत बड़ा अवलंबन का अंतर हो जाता है। जैसे कोई मनुष्य का आयु पूर्ण होता है, क्या होता है आयु पूर्ण होता है ना, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, आत्मा की तो मृत्यु कभी होती नहीं, वो तो है और है, लेकिन पर्याय दृष्टि होने से, पर्याय दृष्टि मैंने मिथ्या दृष्टि होने से, मिथ्या दृष्टि मैंने अनित्यता में नित्यता हमने स्थापित की होने से, नहीं है ऐसा मालूम पड़ता है। क्या आयु पूर्ण हो जाने से क्या मालूम पड़ता है कि नहीं है। नहीं है तो उसको बहुत उसका प्रत्याघात होता आता है। अरे नहीं है क्या, नाश हो गया क्या, जैसे सर्व विनाश हो गया, तो बहुत बड़ा शौक लगता है और आदमी इस दुख में डूब जाता है। ऐसा प्रसंग में आदमी दुख में डूब जाता है, अरे ये क्या हो गया। उसी वक्त उसकी मौजूदगी को संभाले हम तो ये आघात होने वाला नहीं है। तो वो है, कहीं पर भी वो है, बिल्कुल सलामत है, है और सलामत है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक प्रसंग हुआ था, हम पर्यूषण में अहमदाबाद गए थे, बहुत साल पहले की बात है ये। अहमदाबाद में हमारे प्रवचन में अपने स्वाध्याय में एक आदमी आया था, जवान आदमी था, इसका पिताजी का अवसान हो गया था। वो इकलौता लड़का था, बाप बेटे के बीच में, पिता पुत्र के बीच में बहुत अनुराग था, बहुत अनुराग था, मतलब कितना कि उसका मृत्यु हो जाने के बाद उसके घर में जो इसकी पिताजी की फोटो लगी थी ना, उस पर पर्दा लगाना पड़ता था। क्या वो देख नहीं सकता था? अगर वो देखे तो उसको मूर्छा हो जाती थी। क्या हो जाता था? मूर्छित हो जाता था आदमी, उतना बहुत लगाव था। वैसे उनकी कुछ अहमदाबाद में भी मिले थी, बंबई में भी मिले थी, और उनके पिताजी बंबई की मिले संभालते थे, वो अहमदाबाद की संभालते थे, और भी इजिप्शियन कॉटन का बहुत बड़ा मिलों को बेचने का व्यवसाय भी था इंपोर्ट का। तो वैसे तो साथ में रहने का बहुत प्रसंग नहीं था। वो प्रवचन के बाद बोले कि साहब हमारे घर पे पधारो, कुछ बातें हमें करनी है। मैंने कहा ठीक है, अपन तो ये तत्व की बातें करने के लिए तो इन दिनों में आए हैं। तो फिर इसके बंगले पे गए, बैठे, तो बोले कि हमारा एक प्रसंग बन गया है, ये जो दीवार पर फोटो लगी है, हमारे पिताजी की फोटो लगी है, इस पर पर्दा लगाया है, यही कारण है कि कुछ दो तीन महीने मास के पहले उनका स्वर्गवास हो गया है, पर मेरी हालत बहुत बिगड़ गई है, मैं इसका फोटो नहीं देख सकता, फोटो देखने से मुझे मूर्छा हो जाती है। तो हमने पूछा कि क्या बहुत साथ में रहे हो क्या? तो कि नहीं, ये तो बंबई रहते थे, मैं अहमदाबाद रहते था, हफ्ता दो हफ्ते तीन हफ्ते में मैं चला जाता था, तो वहां भी खाना खाने को साथ में बैठते थे, फिर हमारा धंधा ऐसा है कि वो अपने काम में लग जाते, मैं मेरे काम में लग जाता, ऐसा साथ में रहने का तो नहीं हुआ इतना, फिर भी उतना लगाव है कि परिणाम कंट्रोल में नहीं रहते। तो कोई रास्ता हो तो बता दीजिए। क्या बोले वो कि कोई परिणाम को ठीक करने के लिए कोई रास्ता है तो हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ बात ऐसी बताएं कि हमारे परिणाम में कुछ सहनशीलता हो जाए। तो हमने पूछा कि आपको जो भी परिणाम की स्थिति बनती है वो तो नहीं है इसलिए बनती है, आपके परिणाम का आधार क्या है? कि पिताजी नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में आपके पिताजी कहीं और जगह है। क्या और जगह है? पहले बंबई थे, अब स्वर्ग में है। पहले बंबई थे, अब है स्वर्ग में। तो है ऐसा आप परिणाम में अवलंबन लियो तो ये परिस्थिति होगी नहीं। तो बोले कि अरे ये तो बहुत फर्क पड़ता है, है में और नहीं है में बहुत बड़ा अंतर है। कितना बड़ा अंतर है कि एक में सर्वस्व है, एक में शून्यता है, उतना बड़ा अंतर है। जैसे हमारा लड़का पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है, दूसरे सिटी में जाता है, देश छोड़कर परदेश भी जाता है, तो वो है उतना दिमाग में है, अपनी अंगुली पकड़ करके नहीं रहता है 24 घंटा। हाँ, लेकिन वो है ये हमारे भान में है, कोई दुख नहीं होता। नहीं है ऐसा भान होते ही पूरा दुख हो जाता है। तो क्या आत्मा नहीं है ऐसा कभी बन सकता है? गुरुदेव फरमाते हैं कि नहीं है ऐसा कभी बनता है नहीं, नहीं बनता ऐसा कभी। है, है और है, उसी को हम ध्रुव कहते हैं। अब देखिए ध्रुव का मूल्य कितना है। यहां का मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ, देव पर्याय का उत्पाद हुआ, उसके रहित हमने ध्रुव पद को देखा कि वो है। तो है उसमें कोई आपत्ति नहीं, नहीं है तो पूरी की पूरी विपत्ति है। इतना बड़ा अंतर हो जाता है। इसलिए सभी अध्यात्म शास्त्र में तीनों काल विद्यमान रहने वाला अपना ध्रुव परमात्मा के भान में रहना है। अरे अध्यात्म शास्त्र में तो इससे बहुत बढ़िया बढ़िया बात है कि जैसे हम भगवान का दर्शन करते हैं, कल एक पहलू बताया था, आज एक दूसरे पहलू की बात करेंगे। हम भगवान के दर्शन करेंगे किसकी विद्यमानता में, किसकी विद्यमानता में? हमारे परमात्मा की विद्यमानता में रह करके हम परमात्मा का दर्शन करेंगे, हमारे स्वरूप के भान में करेंगे, जब ही तो परमात्मा का सही दर्शन होगा। वरना मूर्ति का, प्रतिमा का दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, ये बात हो जाएगी। तो ये विद्यमानता का भान होना, विद्यमानता का लक्ष्य रहना, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई अपूर्व बात है। कैसी बात है? कोई अपूर्व बात है। इसी का प्रवचन चल रहा है। वस्तु अनादि अनंत है, है और है, उसमें अवस्था का होना और अवस्था का नाश होना, सो अंतर में मेरे ध्रुवपद में नहीं है। अवस्था आती है, अवस्था जाती है, मैं आता भी नहीं और जाता भी नहीं हूं। इसलिए अवस्था की कोई भी उपाधि मुझे छूती नहीं है। मैं त्रिकाल करनी सो न्यारा, पद विलास पद जग उजियारा। मोह महामल मेरे नाही, मेरो अवलंबन मुझ माही, मेरो अवलंबन मुझ माही है। तो ऐसे अंतर में तो आना जाना कुछ है ही नहीं, ऐसे मेरे में ध्रुव में नहीं है, मेरे मतलब मेरे में नहीं है। यह किसके घर की बात है कि अपने स्वयं के घर की बात है। मैंने तीसरे घर की बात नहीं लेना, थर्ड पर्सन नहीं लेना है उसमें। ये द्रव्य है, ये हमारा स्वरूप है, चिद घन है। कैसे हाँ, चिद घन है। गुरुदेव गुरुदेव चिद घन स्वरूप की महिमा में भाव विभोर हो जाते थे। क्या हो जाते थे? भाव विभोर हो जाते हैं, हो जाते थे। उनकी जो वाणी है वो आत्मरस से सराबोर थी, भीगी हुई थी। तो झूला को धक्का लगा के झुलाते हैं, वैसे गुरुदेव आत्मा में आत्मरस में बिठा करके सबको झुलाते थे, झुलते थे सब सुनते सुनते। ऐसा वो आत्मा है, वो चिद घन है। चिद घन है क्या? एकिला चिद घन है। एक एक शब्द में रस कितना पड़ा है देखो। आत्मा चिद घन है उतना ही नहीं, एकिला चिद घन है, ध्रुव ध्रुव है, प्रत्यक्ष है। देखो क्या शब्द आया, आत्मा प्रत्यक्ष है। अभी ये बात थोड़ी आपको अनजानी पड़ जाएगी, ये प्रत्यक्ष है ये क्या चीज है। जैसे ये सर्च लाइट होती है तो उसमें से इतना प्रकाश का पूर आता है, तो उसको उसका नहीं होना वो तर्क से बाहर की चीज हो जाती है। तर्क भी नहीं लगा सकते कि ये प्रकाश वाला वो सर्च लाइट है कि नहीं है, वहां उसका अस्तित्व का तर्क नहीं लगा सकते। इससे अनंत गुणा प्रत्यक्षता प्रत्यक्षता के कारण क्या? आत्मा की प्रत्यक्षता के कारण ऐसी अनंती प्रत्यक्षता विद्यमान है कि उसके होने नहीं होने का तर्क लगा ही नहीं सकते कोई। ऐसी चीज है प्रत्यक्षता वाली। प्रत्यक्षता के विषय में एक बहुत सी गहराई है। क्या है कि जहां तक ये लक्ष्य में प्रत्यक्ष नहीं है, इस शब्द को पढ़ने में सुनने में इसका भाव मालूम नहीं पड़ता। क्यों? कि हमारा लक्ष्य वर्तमान अवस्था पर है, और वर्तमान अवस्था में एक और विशेषता है कि ये अवस्था प्रकट होकर के अनुभव गोचर होती है। क्या होता है? वर्तमान अवस्था रूप भाव प्रकट होकर के अनुभव गोचर होता है, और ये त्रिकाली ध्रुव पद है वो प्रकट नहीं होता जिस तरह अवस्था प्रकट होती है और अनुभव गोचर होती है, वैसा उनका नहीं बनता। फिर भी यह आत्मा प्रत्यक्ष है। श्रीमद् रायचंद्र जी ने लिखा है, एक अपने पत्र में लिखा है कि आत्मा है उतना ही नहीं, आत्मा प्रत्यक्ष है। आत्मा प्रत्यक्ष होने से हमारे लक्ष्य में प्रकट है। आत्मा है, प्रकट है, प्रत्यक्ष है, क्योंकि स्वसंवेदन गोचर होता है, क्योंकि स्वसंवेदन अनुभव में आता है। क्या कहा? तो ये प्रत्यक्षता कहां से नजर आती है? हमें इस दृष्टिकोण से इस विषय को समझना है कि यह प्रत्यक्षता कहां से नजर आती है। कि ज्ञान में जो ज्ञान वेदन है, क्या ये ज्ञान चल रहा है ना? हर वर्तमान में, प्रत्येक वर्तमान क्षण में ये जो ज्ञान चलता है, प्रकट चलता है ज्ञान, वो ज्ञान में ज्ञान वेदन है। वो ज्ञान वेदन स्वयं का वेदन रूप है, इसलिए उनको स्वयं संवेदन कहने में आता है। अब जो है इसके विचार से थोड़ा हट करके, क्या इस विषय के विचार से भी थोड़ा हट करके हमारे वर्तमान ज्ञान वेदन को हम वेदे, क्या करें, विचारे नहीं लेकिन वेदे, तो हमें उसमें अंश प्रत्यक्षता नजर आएगी। क्या? आंशिक प्रत्यक्षता नजर आएगी। और आंशिक प्रत्यक्षता नजर आने से जो ध्रुव पूरा प्रत्यक्ष है, जो ध्रुव अखंड प्रत्यक्ष है, जो ध्रुव पूर्ण प्रत्यक्ष है, वो भी नजर में आए बिना रहने वाला नहीं है। कहां से कहां गए हम? ये ध्रुव में जाने के लिए चैनल है। क्या? ध्रुव है वो अप्रकट है, अव्यक्त है, हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर से अगर हमें दिखाई दे तो हमारी विद्यमानता हमें महसूस होगी, वहां हमारी विद्यमानता हमें महसूस होगी। तो इसलिए उस ध्रुव तक पर्याय को पहुंचना है या पर्याय को ध्रुव सन्मुख होना है, उसके लिए कोई रास्ता है, कोई चैनल है, क्या कोई मार्ग है? क्या तो है, तो एक पंक्ति में दिखा दिया है कि वो है, प्रकट है, प्रत्यक्ष है, क्योंकि स्वसंवेदन वेदन में आता है। अब देखिए, हम तत्वज्ञान का अभ्यास करते हैं शास्त्र के माध्यम से, कभी शास्त्र पढ़ते हैं, कभी शास्त्र सुनते हैं, और हमारे जो भी शास्त्र में आत्मा का जो विषय है उस पर हमारा विचार चलता है। क्या? उस पर हमारा विचार चलता है, लेकिन विचार में वस्तु परोक्ष रहती है हमेशा। क्या होता है? विचार में हमारा स्वरूप जो वस्तु रूप है, विद्यमान रूप है, वो परोक्ष रहती है। और वस्तु जहां तक परोक्ष रहती है तो थर्ड पर्सन हो जाता है, वो हमारी चीज नहीं रहती, अहमपणा उसमें स्थापित नहीं होता, अहमपणा का उसमें एहसास नहीं आएगा। और ये परोक्षता एक ऐसा पर्दा है जो हमें हमारा स्वरूप का सम्यक दर्शन होने नहीं देता। इस परोक्षता का पर्दा हमें हटाना है। तो क्या होता है कि जो भी विचार है, विकल्प है, विचार है, ये वस्तु सामने नहीं होने पर होता है। दृष्टांत लेवे हम कि आप हमारे सामने नहीं बैठे हो तो आपका विचार करेंगे, लेकिन जब आप हमारे सामने हैं तो आपका विचार क्या करना है, आपको देख लेना है इसी से सादा। इसका विचार क्या करेंगे, देखेंगे प्रत्यक्ष तौर से आपको, इसमें विचार क्या करना है। तो हम जो हर विद्यमान में ध्रुव रूप से रहते हैं और प्रत्यक्षता ये हमारा स्वरूप है जी, जब प्रत्यक्षता हमारा स्वरूप है तो हम इसका विचार क्यों करेंगे। अगर विचार करेंगे तो भी विचार कर करके थक जाएंगे। आत्मा का विचार करने वाला भी विचार कर करके थक जाता है। क्यों? कि ये कृत्रिम प्रक्रिया है, ये सहज प्रक्रिया नहीं है। विचार को उठाना पड़ता है, करना पड़ता है। थकान तो कृत्रिमता में आती है, सहजता में कभी थकान नहीं आती। दृष्टांत है इसका, बहुत बढ़िया दृष्टांत है कि हमारे जो श्वासोश्वास है वो हमारे प्राण है। कैसे चलता है वो, सहज चलता है या चलाना पड़ता है, है? 24 घंटा सहज चलता है, जिसको चलाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो नैसर्गिक प्रक्रिया है, कुदरती प्रक्रिया है। अरे चलाना क्या नहीं पड़ता है क्या, वो चलता है, उसको बंद नहीं कर सकते। अगर बंद करें तो आपत्ति हो जाती, बड़ी विपत्ति हो जाती। उतना वो सहज है। वैसे हमारे स्वरूप का आराधन भी इससे ज्यादा सहज है। ये श्वासोश्वास की प्रक्रिया से बहुत अनंत गुण सहज है, उसको करना फरना होगा नहीं है, क्योंकि ये हमारा भाव प्राण है। ये ज्ञान दर्शन चारित्र आनंद शांति, ये तो हमारा भाव प्राण है। ये सहज होता है, उसमें थकान नहीं होती है, अनादि की थकान उसमें बंद हो जाती है, शांत हो जाती है, मिट जाती है। ऐसा इसका स्वरूप है। तो सहज कैसे हो कि जब स्वरूप प्रत्यक्ष हो तब सहज होता है, अगर स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं होता तो सहज होता नहीं। तो ये स्वरूप की प्रत्यक्षता जो होती है, जब स्वरूप की प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष अनुभवांश से, अनुभवांश मैंने ज्ञान वेदन से लक्ष्य में आती है, लक्षित होती है, तब ये उसको कहते हैं बीज, कहते हैं काय का बीज है, मोक्ष मार्ग का ये बीज है। वो बीज बो देने से, लक्ष्य में बीज को बो देने से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का अंकुर उसमें से बाहर आने वाला है। ऐसा बीज बोने से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का अंकुर इसमें से पैदा होने वाला है, उत्पन्न होने वाला है। इसलिए ये ज्ञान दशा का बीज है ऐसा कहने में आया है। और ये बिना प्रत्यक्षता कभी होता नहीं। जब आत्मा की रुचि होती है, कल रात को थोड़ी बात चली थी, क्षमा का दिन था तो उसमें ये बात गुरुदेव ने चलाई अपने प्रवचन में कि बीज का बोना कब होता है, कि स्वरूप की अत्यंत रुचि के काल में, जब जीव को स्वभाव प्रत्यक्षता का संस्कार पड़ जाता है, अपनी विद्यमानता का संस्कार पड़ जाता है, वो अपनी रुचि के काल में होता है, स्वभाव की स्वरूप की रुचि के काल में होता है, तो उसका अंकुर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पैदा हुए बिना रहता नहीं। किसी को अल्पकाल में इसी भव में हो जाता है बहुभाग, तो अगर किसी का आयुष्य नजदीक में पूर्ण होने वाला हो तो दूसरे या तीसरे भव में उसको सम्यक दर्शन का होना अवश्यंभावी है ही, नहीं हो वैसा नहीं बनता। इसको बीज इसलिए कहते हैं कि वो कभी निष्फल नहीं जाता। विभाव के संस्कार अनादि से होने पर भी उस वो निर्मूल हो सकता है, उसकी पूरा विनाश हो सकता है, उसका क्षय हो सकता है, लेकिन आत्मा का संस्कार अनंत काल में रुचि में एक दफे भी डल जावे, पड़ जावे, तो तीन काल में निष्फल होने वाली चीज नहीं है। आत्मा तो ध्रुव है ही, लेकिन इसके संस्कार भी ध्रुव होते हैं। क्या? उसके संस्कार भी ध्रुव होते हैं, क्योंकि उसका संबंध द्रव्य के साथ है, उसका मूल संबंध तो द्रव्य के साथ है। पर्याय में तो भी मिथ्यात्व है, भवांतर भी हो जाएगा, दूसरे भव में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होगा, लेकिन द्रव्य में चीज पड़ गई, द्रव्य में वो चीज पड़ गई, वो पैदा हुए बिना रहने वाला नहीं है। तो ये जो प्रत्यक्षता है वो हमारे ज्ञान के परिणमन में वेदन रूप से चालू है, और ये प्रत्यक्षता हमारा ध्रुव धाम का सैंपल है। क्या है? नमूना है। वानगी कहते हैं ना, वानगी कहते हैं, क्या कहते हैं ढूंढारी में उसको, वानगी कहा है अनुभव प्रकाश में लिया है दीपसिंह जी ने, कि अनंत संत धर्मात्मा इस ज्ञान वानगी को पहचान पहचान करके अजर अमर हो गए, अमर हो गए वो। तो ये सैंपल विद्यमान है कि नहीं है, ये अपने उपयोग में, अपने ज्ञान के वर्तमान उपयोग में हर हमेशा चालू रहता है। सूर्य उदय अस्त होता है, दिया भी बुझता है और फिर जलता है, लेकिन उसमें कोई एक समय भी अनुपस्थित होता नहीं है, ये ज्ञान वेदन निरंतर चलता है, निरंतर चलता है। पर्याय रूप होने पर भी, पूर्व पर्याय जिस काल में व्यय होती है उसी काल में आत्मा वेदन को नई पर्याय में ग्रहण कर लेता है, तब वो व्यय होती है। क्या नई पर्याय को ग्रहण करके पूर्व पर्याय का व्यय करता है? एकला पूर्व पर्याय को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमारा जो ज्ञान वेदन है वो निरंतर चलता है। यहां से हम स्वय सन्मुख हो सकते हैं, स्वय संवेदन से स्व सन्मुख हो सकते हैं, और हमारी अनंत प्रत्यक्षता को हम पहचान सकते हैं। उसमें बहुत बहुत चीज भरी है। क्यों दिखता इसलिए नहीं है कि हमारा लक्ष्य कहीं और जगह पड़ा है, लगा हुआ है। तो श्री गुरु करुणा करते हैं। क्या श्री गुरु है? वो करुणा से दिखाते हैं कि देख भैया, तेरा वेदन तेरे ज्ञान में है, तू अपने ज्ञान से अपने आप को क्यों नहीं देखता? जब तू अपने ज्ञान में आने वाले परगेय को देखता है तो जिसमें वो गेय झलकता है, पर आता नहीं है लेकिन झलकता है, वो झलकाने वाले को क्यों नहीं देखता अपने आप को? अपने आप को देखने को जाएगा तो मुंह जो है वो फिर ना होगा, प्रसन्नमुखता बदल करके स्वसन्नमुखता में आना होता है, और आना होता है तो वेदन है वो छिपा नहीं रहता। ज्ञान का ज्ञान वेदन छिपा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो टंकोत किरण है। कैसा है? कि वो टंकोत किरण है, जो टांकना से उत्कीर्ण किया जाता उसको मिटा नहीं सकते, वैसे वेदन को हम मिटा नहीं सकते, मिटाना चाहे तो भी। क्या मिटाना चाहे तो भी मिटा नहीं सकते? हैरान तो तब है हम के मिथ्यात्व अवस्था में इस टंकोत्कीर्ण ज्ञान वेदन को भी हम उल्लंघन कर जाते हैं, उसको गौण करके, उसको उस पर पर्दा लगा करके, राग का पर्दा उस पर लगा करके हम उसको छोड़ देते हैं, तो अनेक प्रकार के दुख को पाते हैं, दुख को अनुभव करते हैं। यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। हम तो यह कहने जा रहे थे कि ये प्रत्यक्षता में बहुत चीज भरी है। क्या? कि हमारी अनंत शांति प्रत्यक्ष है, हमारा अनंत सुख प्रत्यक्ष है, हमारा अनंत अनंत बेहद सीमा से बाहर अपरिमित परिसीमा से भी बाहर ऐसा आनंद भी प्रत्यक्ष है। जब ये सब चीजें अनंत अनंतता के रूप में प्रत्यक्ष है, फिर चिंता काहे की, फिर विकल्प किसका, फिर भय किस बात का, फिर डर किस चीज का। कि ये कोई चीज फिर सामने आने वाली नहीं है। ये परमोत्कृष्ट परम शांत 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 रस से भरा हुआ ये ध्रुव तत्व भी प्रत्यक्ष है, ऐसा श्री गुरुदेव कहते हैं इधर, कि ये प्रत्यक्ष है। तुम इसको पर्दा में रख कर इसका विकल्प मत कर, विकल्प को छोड़कर उसको प्रत्यक्ष तौर से प्रत्यक्ष कर ले। ये प्रत्यक्ष है ही, तो अनादि अनंत प्रत्यक्ष है, वर्तमान में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, उसी को वेदन में लेकर के, विकल्प में लेकर के, विचार में लेकर के नहीं, वेदन में लेकर के इस चीज को प्रत्यक्ष कर सकते हैं पूरे के पूरे। जैसे हीरा चमकता है, वो तो जहां तक रहेगा वहां तक चमकेगा, तो हम तो वर्तमान नजर चमक नजर में लेते हैं, तो पूरा हीरा को ज्ञान में ले लेते हैं, क्या अकेली चमक को लेते हैं? कोई ऐसा कहेगा क्या कि चमक तो दिखती है किंतु हीरा हमें नहीं दिखता? ऐसा कोई कह सकता है क्या कि ये तो कल्पना में आ गया? ऐसा कभी बन सकता? बन सकता भी नहीं, करना चाहे तो भी। अकेली चमक को नजर में ले और हीरा को नहीं जाने, ऐसा करना चाहे, जानना चाहे तो भी नहीं हो सकता है। ऐसे ही आत्मा, ध्रुव आत्मा प्रत्यक्ष प्रकाशमान है अपने स्वसंवेदन में। क्या? अपने स्वसंवेदन में वो प्रत्यक्ष प्रकाशमान है, ऐसा नित्य है, अनादि अनंत ऐसा नित्य है, वैसा का वैसा एक रूप है, जिसको भाव अभाव नहीं है। भाव भाव की दृष्टि छुड़ाते हैं, लक्ष्य छुड़ाते हैं और स्वरूप को प्रत्यक्ष कर देते हैं।
तो हम सब भी भाए जिनवाणी, हम सब भी
उत्पन्न होना है और अभाव है, वो पर्याय का अभाव होना है। सो हमारे वस्तु के भीतर में नहीं है, पर्याय आर्थिक नहीं, इतना गौण हो जाता है साधक को, क्योंकि उतना स्वभाव में उतनी अनंत सामर्थ, उतना गुण भरे हैं अपने अनंत सामर्थ के साथ साथ, कि इसके आगे कोई दूसरी चीज वर्तमान अवस्था मुख्य नहीं होती तो उस अवस्था का विषय कैसे मुख्य हो सकता है, कि सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी वो महान चीज है, इसकी महानता पहचानने से आती है और ये पहचान वेदन से होती है, बिना वेदन ये सिर्फ विचार विकल्प में होती नहीं, ऐसी एक स्थिति है। हाँ, श्वसन मुक्ता में ये होती है, ऐसी चीज है। यहाँ तक रखे हो चुका है।
अभी पंडित जी के द्वारा प्रवचन आपने सुना,